Kalpa Radio Exclusive Interviews।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।
आज अर्पा रेडियो के स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर आनंद कश्यप। डॉक्टर आनंद कुमार कश्यप ने द्वारका प्रसाद विप्र महाविद्यालय बिलासपुर से स्नातकोत्तर के बाद पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हिंदी साहित्य में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। वर्तमान में आनंद जी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक पद पर चयनित हैं। आदर्श कला मंदिर नाट्य संस्थान के सक्रिय सदस्य आनंद जी ने रायपुर दूरदर्शन में प्रसारित भुइयां के सरग लघु फिल्म में अभिनय भी किया है और खुदा खैर करे नाटक में रंगा स्वामी पात्र का उनका अभिनय तो अविस्मरणीय माना जाता है। छत्तीसगढ़ में गेड़ी नृत्य के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान लोक श्रृंगार भारती के संस्थापक सदस्यों में भी इनका नाम शुमार है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के समय बिलासपुर के गांधी चौक के आसपास के जनजीवन का चित्रण, प्रतियोगियों की कुंठा, हताशा, निराशा, संतराश, घुटन और सफलता के पश्चात हर्षोल्लास की यात्रा को अपने इस पहले उपन्यास के माध्यम से आनंद जी ने बड़े सजीव रूप में चित्रित किया है। ये जो हमने उपन्यास के बारे में जानकारी दी डॉक्टर आनंद कश्यप के, ये है गांधी चौक, संघर्ष, समर्पण और सफलता की कहानी। हिंदी साहित्य में एमए करने के बाद डॉक्टर आनंद कश्यप ने ये पहला उपन्यास लिखा है और क्यों लिखा है, इसकी क्या प्रतिक्रिया हो रही है, आइए हम उनसे जानते हैं, उनसे बातें करते हैं। नमस्कार और स्वागत आनंद जी आपका अर्पा रेडियो पर।
अर्पा रेडियो की टीम को मेरी तरफ से नमस्कार और श्रोताओं को भी नमस्कार।
डॉक्टर आनंद, आप हमें ये बताइए कि जो ये किताब आपकी है इस समय मेरे हाथ में है, हमारे श्रोता तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर जो कवर है वो बिलासपुर के गांधी चौक का है और इस उपन्यास का नाम भी आपने रखा है गांधी चौक।
जी
क्यों, ऐसा भला क्यों?
गांधी चौक जो है इसको मुखर्जी नगर से इसकी तुलना करते हैं, यहाँ बच्चे आते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ से आते हैं और कुछ परीक्षा की तैयारी करने के लिए बाहर अदर स्टेट से भी यहाँ आते हैं।
जी हाँ।
और यहाँ रुक कर तैयारी करते हैं और यहाँ की जो तैयारी है, बच्चों के जब तैयारी करते हैं तो उनके साथ में क्या समस्याएं आती है और कैसे पढ़ाई करते हैं और कैसे सफलता प्राप्त करते हैं, इस पर उपन्यास है, इसीलिए इस चौक को मुख्य हाईलाइट किया। जी
गांधी चौक के बारे में हमारे बिलासपुर के तो सभी श्रोता साथी जानते हैं कि वो पूरी सड़क जो है कोचिंग की वहाँ पे भरमार है और पूरे देश भर से अलग अलग कोचिंग्स में पढ़ने के लिए छात्र छोटे छोटे गांव से लेकर बड़े शहरों तक से वहाँ पर पहुँचते हैं और हजारों की संख्या में के स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो
जी।
अभी सहायक प्राध्यापक के रूप में अभी अभी आपका चयन हुआ है तो मुझे लगता है कि आपने बहुत समय इस एरिया में, इस क्षेत्र में गुजारा है।
जी जी।
शायद उन्हीं लम्हों को, उन्हीं घटनाओं को जोड़कर आपने ये उपन्यास तैयार किया है।
जी जी।
तो आनंद जी, ये विचार आपका, जैसे आपने सोचा मैं उपन्यास लिखूं, तो इस विषय पर उपन्यास लिखूं, आपके दिमाग में कैसे आया?
लगभग 14 से 15 वर्ष अपने जीवन का लगभग उसमें भूमिका में भी मैं लिखा हूँ कि उपन्यास मेरी जवानी की कीमत पर लिखी गई है। तो मैं अपना सहारा जो है वो यवन तो यहीं दे दिया तैयारी करने में 15 वर्ष तक।
जी जी।
तो मैं उन 15 वर्षों में रह करके जिन चीज़ों को मैंने देखा और महसूस किया उन्हीं को मैं इसमें उतारने का प्रयास किया हूँ मैं, इसीलिए वो दिमाग में था कहीं ना कहीं कि इनको मैं लोगों तक पहुँचाऊँ ताकि आने वाले जो प्रतियोगी हैं उनको के लिए ये सहायक सिद्ध हो।
सच बात है, जैसे आपने 15 साल गुजारे हैं, पिछले 15-20 साल का किसी भी छात्र का संघर्ष जो है इतना कठिन है, कहीं पे नौकरी नहीं है, लोगों को रोज़गार मिलना बहुत कठिन हो रहा है। उससे पहले का समय लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ करता था 80s की बात की जाए तो, लेकिन 90s के बाद से जो है ये समस्या लगातार हर प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्र के साथ होती है। तो ये 15 वर्ष जो आपने गुजारे, तो आपने क्या महसूस किया कि आपने भी बहुत सारी परीक्षाएं दी होंगी?
जी जी।
तो आप किस मानसिक यंत्रणा से कैसे गुजरे आप?
मेरा मानना है कि हताशा, कुंठा और निराशा ये हर प्रतियोगी के जीवन का एक हिस्सा, अभिन्नांग बोल सकते हैं इसको।
जी हाँ।
अगर कोई विद्यार्थी के अंदर हताशा, कुंठा और निराशा नहीं है, इसका अर्थ ये है कि वो अपनी तैयारी जो है सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। तो इन चीजों से मैं भी अछूता नहीं रहा और इस समय जो है वहां रह करके जितना जो उस समय का जो था नोट्स में अधिकतर जो समय है नोट्स बनाने में निकलता था। अभी तो नोट्स मिल जाते हैं मार्केट में, पर उस समय हम बड़े भैया और ये सब का सहयोग लेकर नोट्स तैयार करते थे और उसी में से एक जो सारे किरदार आसपास के हैं तो एक भीष्म सिंह जैसा मैंने किरदार भी उसी को देख करके उसमें रचा था। जी,
तो क्या जो आपने कहा किरदार रचा था, क्या आप हमारे श्रोताओं को अपने इस गांधी चौक उपन्यास के बारे में बताएंगे?
जी, गांधी चौक उपन्यास, जैसे गांधी चौक का ही तात्पर्य दिल्ली के मुखर्जी नगर से इसकी आजकल तुलना की जा रही है और लगभग इसके आसपास 20,000 बच्चे गांधी चौक में ही तैयारी करते हैं।
अच्छा, मतलब हम तो बिलासपुर में रहते हैं, हम इतनी बड़ी संख्या का अंदाजा नहीं लगा सकते।
जी जी, पूरे देश भर से बोल सकते हैं, छत्तीसगढ़ से लगभग 90% और अदर स्टेट से भी आकर के बच्चे रहते हैं, तो 20,000 बच्चे तैयारी करते हैं। अब यहाँ मैं उन 15 सालों में लगभग मैंने देखा, मैं तो गांधी चौक में जो बच्चे आकर जो तैयारी करते हैं उनको मैं देखा और उसी को उपन्यास के माध्यम से उतारने का प्रयास कर। इस उपन्यास में भी 3 से 4 बच्चे जो हैं वो बाहर से आते हैं, कुछ लोकल बच्चे रहते हैं, वो सब मिलकर तैयारी करते हैं और इसमें 2 कहानियां पैरलर चलती हैं।
अच्छा।
सफलता का अर्थ जो है हर बच्चे के लिए अलग अलग होता है, इस उपन्यास में उसको दिखाया गया है कि एक बच्चे के लिए यहाँ पे गांधी चौक में ही सफलता का अर्थ था पद पाना और एक बच्चे की सफलता का अर्थ था नीलिमा को पाना। तो ये 2 अलग अलग स्टोरी है और दोनों के सफलता के पर्याय जो है बिल्कुल अलग अलग है, तो पढ़ने से ये और आप लोगों को क्लियर होगा।
जी जी जी, डॉक्टर आनंद, जैसा आप बता रहे हैं मुझे याद आ रहा है कि मुझे लेखक का नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद डार्क हॉर्स नाम है उस पुस्तक का जिसमें मुखर्जी नगर के इन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के कुछ कहानी गढ़ी गई है। मैंने उसका नाट्य रूपांतरण रायपुर में देखा था।
जी 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 जी, हमारे बड़े भैया नीलोत्पल जी हैं, मृणाल नीलोत्पल जी, वो डार्क हर्स लिखे हैं और उस पर युवा साहित्य एकेडमी अवार्ड भी उनको प्राप्त है। तो वो मैं इनकी जो प्रति है वो खुद से ले करके वो अपने फेसबुक पेज पे इसको पोस्ट किए थे, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि नीलोत्पल जी जैसे एक युवा बड़े लेखक और युवा साहित्य एकेडमी अवार्डी लेखक जो हैं वो इस गांधी चौक को प्रमोट कर रहे हैं। इसी तरीके से एक और बड़े लेखक हैं उपन्यासकार दिव्य प्रकाश दुबे जी, उन्होंने भी इसको अपना प्यार दिया और अपने पेज पे इसको पोस्ट किया। इसके अलावा रणविजय सर हैं बनारस के, वो बड़े राइटर हैं, तो वो भी अपने इसको सम्मान दिए, पेज को लेकर फोटो पोस्ट किए इसमें।
बड़े बड़े लोग भी आपकी इस उपन्यास को पसंद कर रहे हैं और आपकी पहले प्रयास को जो सब लोग बिल्कुल सफल मानने के लिए विवश है कहना चाहिए, हमको पढ़ना ही पड़ेगा सब लोगों को ये उपन्यास।
विवश तो नहीं है पर इतना जरूर पाठकों का जो स्नेह मिल रहा है उसको मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ और सारे पाठकों की एक चीज कॉमन है कि वो पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं तो पढ़कर ही वो हम इसको उठते हैं, एक बैठक में उठते हैं।
तो ये जो किताब है आपकी जिसका पहला एडिशन अभी प्रकाशित हुआ है, आपने कितनी किताबें छपवाई और इसका क्या प्रतिक्रिया लोगों से आपको मिल रही है?
शुरुआत में अमेजन पे लगभग ये 500 प्रतियां।
अच्छा, आपकी अमेजन पर भी हैं और हार्ड कॉपी आपको बिलासपुर में भी उपलब्ध है।
जी, और डिस्ट्रीब्यूशन से अमेजन पे 500 प्रतियां लगभग और डिस्ट्रीब्यूशन जो ऑफलाइन जो है लगभग 700 प्रतियां इसकी बिक चुकी है।
अभी आपका प्रकाशित होकर आया कितने दिन पहले?
26 जून के आसपास, मतलब जून के लास्ट में है, तो लगभग 2.5 से 3 महीने का समय।
जी जी, तो उस हिसाब से जबकि आजकल लोग बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं, सुनना और देखना ज्यादा चाहते हैं, किताबें खुद खरीदना बहुत कम हो गया है लोगों का, उस हिसाब से आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है ये कि पहला उपन्यास इस बड़ी संख्या में बिक रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है।
जी, इसका एक वाकया भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ।
जी,
एक हॉस्टल में जो है बच्चे जो है एक साथ रह करके पढ़ते हैं, तो
ये उपन्यास का अंश बता रहे हैं।
इस उपन्यास गांधी चौक की बात बता रहा हूँ।
जी जी,
एक हॉस्टल में मैं इसको एक दिया कि आप लोग पढ़ लेना करके, तो उसमें एक ग्रुप में बैठ करके सारे उपन्यास गांधी चौक को पढ़ते थे रोज लगभग एक चैप्टर, क्योंकि पढ़ने के बाद जो समय निकलता है तो रात में खाना खाने के बाद एक चैप्टर पढ़ते थे।
अच्छा।
फिर एक दिन ऐसा हुआ उसमें 4-5 लोगों के ग्रुप से एक बालक जो है उत्सुकतावश एक दिन पूरी बुक को गायब कर दिया और रात भर में उसको पढ़ करके दूसरे दिन मेरे पास मैसेज किया कि सर आपकी बुक को मैं वहां से, मैं उस ग्रुप से ले करके मैं अलग से पूरी पढ़ दिया हूँ करके।
अच्छा।
तो बच्चों में एक उत्सुकता देखने को मिली पहली बार कि कोई पुस्तक के लिए बहुत ज्यादा, मतलब एक पागलपन ही या दीवानगी बोले वैसा जो है इस पुस्तक के प्रति देखने को मिल रही है।
उन लोगों को इस पुस्तक में अपनी जीवनी अब खुद को देख पा रहे होंगे शायद वो लोग।
जी, क्योंकि ये विद्यार्थियों से संबंधित, प्रतियोगियों से संबंधित है, तो हर प्रतियोगी उसमें अपनी छवि देखता है, शायद इसलिए वो इसको उत्साह पूर्वक पढ़ रहे हैं।
तो आप बिलासपुर के लेखक हैं, पहली बार आपका ये उपन्यास आया और दुनिया भर में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, तो हमको भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है। अर्पा रेडियो टीम की तरफ से हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और साथ ही एक चीज़ की बधाई और देते हैं कि आपने इतने 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिर प्रतियोगी परीक्षा सफलता प्राप्त की और सहायक प्राध्यापक के पद पर आप नियुक्त हो चुके हैं।
नहीं, अर्पा रेडियो को भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम कि आपने अर्पा रेडियो जो है वो नए लेखकों को इस तरीके से इंटरव्यू के माध्यम से श्रोताओं से परिचित करवाता है और इससे लेखकों का जरूर उत्साह बढ़ता होगा। मेरा भी उत्साह, यहाँ आने से पहले मैं भी उत्साहित था कि अर्पा रेडियो जा रहा हूँ करके, और यहाँ आके अच्छा लगा आपके साथ।
आनंद जी, हम चाहेंगे कि आपके इस उपन्यास की लेखन शैली भी हमारे श्रोताओं तक पहुँचे, तो क्या आप इस उपन्यास में से एक अंश पढ़कर सुनाएंगे हमें?
जी जी बिल्कुल, मैं जीवन के तांडव का एक अंश है, बहुत छोटा सा अंश, उसको मैं सुनाना चाहूँगा। भीष्म सिंह ने अचानक अट्टहास करते हुए पागलों की भांति कहा, मैं भीष्म सिंह डिप्टी कलेक्टर बन के रहूँगा, इस बार मैं ही टॉपर रहूँगा, हाँ मैं ही टॉपर रहूँगा। फिर हंसते हुए, एक बार डिप्टी कलेक्टर बन जाऊँ फिर मैं दुनिया को बताऊँगा कि मैं भी सफल हो गया। कुछ रुक कर कहते हैं, अपने पिता को, भाई को, भाभी को बताऊंगा कि मेरा भी इस समाज में अस्तित्व है, अपने दोस्तों को बताऊंगा मैं भी गांधी चौक में सफल लोगों के शामिल हो गया हूं। वो फिर लड़खड़ाते कदमों से इधर उधर घूमने लगते हैं, दीवार पर लगे एक शीशे को जमीन पर पटक कर तोड़ देते हैं, कुछ पुस्तकों को फाड़ डालते हैं, फिर अचानक से रोते रोते कहते हैं, हे ईश्वर मुझे माफ करना, तूने मुझे इतना सुंदर मानव जीवन दिया, इतना सुंदर कर्म क्षेत्र दिया, फिर भी आज तक मैं कुछ नहीं कर सका, अपने माता पिता भाई भाभी सबको मैं दुख ही देता रहा, मैं किसी के लिए भी कुछ नहीं कर पाया, अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं, मुझे मरना होगा, मेरे मरने में सबका हित है, जीवन के देवता मुझे माफ करना, मृत्यु के देवता तुम मुझे गले लगा लेना, हे मृत्यु देवता तुझसे एक ही निवेदन है, तू मुझे असफल ना करना, तू मुझे कष्ट ना देना, मैं तेरी शरण में आ रहा हूँ।
वाह वाह, बहुत खूब आनंद जी। अच्छा आनंद जी, ये बताइए कि आपकी प्रेरणा स्रोत कौन था, कि आपके मन में तो ये कहानी घूमड़ रही थी कि मैं लिखूंगा उपन्यास के रूप में, लेकिन कोई तो प्रेरणा स्रोत होगा जिसने आपको लिखने के लिए उत्साहित किया होगा।
जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और इसको बताने के लिए मैं उतना ही ज़्यादा उत्साहित हूँ, मैं बताते हुए अच्छा लग रहा है उसको। मैं पेंसिल से कुछ एक दो पेज लिखा था मैं, उसको मेरी श्रीमती पढ़ी वेद स्वरूपा जी, और वो जो है पढ़ने के बाद में वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ, और उसके बाद फिर वो आकर पूछी अब क्या होगा, इसके आगे क्या होना है, तो उनसे प्रेरित होकर के उनको बताने के लिए और मैं लिखते गया, और मैं शायद और भी होंगे, लेकिन मैं अपने आप को इसलिए खुश नसीब मानता हूँ कि मेरी श्रीमती जो है वो लिखने से पहले ही बोल दी थी कि आपकी पुस्तक को प्रकाशित करने की जवाबदारी मेरी है, तो इसलिए मैं उनको तो एक धन्यवाद देता हूँ, उनका साथ हमेशा रहा और इसी वजह से मैं लिखने के लिए हर चैप्टर के बाद में प्रोत्साहित होता रहा।
तो आनंद जी, हम कह सकते हैं कि जैसा कहा जाता है कि हर सफल आदमी के पीछे एक महिला होती है, तो आपके पीछे भी आपकी श्रीमती जी थी इस सफल उपन्यास को लिखने में।
अब बिल्कुल, उसके बगैर उपन्यास का पूरा होना शायद असंभव था।
तो श्रोताओं, ये थे डॉक्टर आनंद कश्यप, बिलासपुर के एक युवा उभरते हुए साहित्यकार जिनका लिखा पहला उपन्यास इस समय अमेज़न पर बेहद तेजी के साथ बिक रहा है, और साथ ही और इसकी प्रकाशित पुस्तक जो दुकानों में उपलब्ध है तेजी से कम होती जा रही है। अर्पा रेडियो इस युवा लेखक को आगे और बढ़ने की शुभकामनाएं प्रेषित करता है और उम्मीद करता है कि उनके कुछ और उपन्यास हमारे सामने जल्दी ही आएंगे। फिलहाल आपसे उम्मीद कि उनका ये प्रकाशित उपन्यास गांधी चौक आप जरूर पढ़िए, जल्दी पढ़िए।
अर्पा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।